ओम शांति। अभिनंदन करेंगे हम आदरणीय गीता दीदी का। बहुत शॉर्ट नोटिस पर आज ही आदरणीय दीदी को ये प्रोग्राम के बारे में बताया कि आपकी क्लास है यहाँ और आपने पधार कर कृतार्थ किया। आप नीमच गए हैं कभी दीदी? ये नीमच का ग्रुप है और यहाँ की विशेषता है कि जो महारथी क्लास कराने आए एक दो को छोड़ के सब नीमच जा चुके हैं, तो इसीलिए उसका फायदा ये है कि नीमच वाले सबको बहुत बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो इसीलिए सभी पहचानते भी हैं, जानते भी हैं। ब्राह्मणों की सेवा वहाँ होती रही है, तो आप सभी बहुत सी विशेषताएं गीता दीदी की जानते हैं। क्लास कराना, मंथन करना और बहुत मीठी वाणी में इतने अच्छे से स्पष्ट करना कि मुझे लगता है उनकी बातें सुन के ऐसा लगता रहता है, फील होता है कि हर एक ब्राह्मण की सोचने की, धारणा करने की क्वालिटी बढ़े, इसकी बहुत क्लियर फीलिंग कि ये इच्छा है दीदी की, ऐसी क्लियर फीलिंग आती रहती है आपकी क्लासेस में। चाहे वो टीचर बहनों को भी कराते हैं, चाहे वो सभी ब्राह्मणों को कराए, बहुत बहुत अच्छा गहरा मंथन। और आपने अपने टीन एज में ही बाबा को पहचाना और सब तरफ ज्ञान देने का संकल्प करके, तो बाबा ने पहले गुजरात में सेवा करवाई, फिर धीरे धीरे भारत में, विश्व में और अब इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में ही बिठा लिया कि यहाँ बैठे बैठे सेवा होती रहेगी। तो इसीलिए आपकी प्रेजेंस, आपकी डिवाइन प्रेजेंस ही बहुत सेवा करती है। तो आज आप संगम युगी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है कि हम जीवन मुक्त बनेंगे सतयुग में, लेकिन उस वक्त अनुभव नहीं होगा क्योंकि हम सारे एक जैसे जीवन मुक्त होंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ खास प्राप्ति कर रहा हूँ, लेकिन अब अगर हम मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्थिति का अनुभव करेंगे तो कितना अच्छा, कितना हल्का, कितना बढ़िया लगेगा, तो वो आप अनुभव कराएंगे आदरणीय गीता दीदी जी।
ओम शांति। मधुबन में आए हैं और पिछले 4 दिनों से रह रहे हैं, तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव तो यहाँ ही हो जाता है ना। मधुबन की भूमि में हम सहज ही इस बात का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि बाबा की गोद में है, बाबा जब साकार में थे और लोग आते थे पूछते थे ये सब किसका है, तो बाबा कहते थे ये सब कुछ बच्चों का है, और बच्चों से पूछते थे तो कहते थे ये बाबा का है। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं कि सब कुछ होते हुए, सब कुछ करते हुए मैंपन और मेरापन नहीं आना, कर्तापन का भान नहीं आना, निमित्त भाव रहना, यही जीवन मुक्त स्थिति का आधार है। और मधुबन की दिनचर्या ऐसी बनी हुई है, यज्ञ ऐसा बाबा ने और दादियों ने सेट किया है, वायुमंडल सबकी तपस्या से ऐसा बना है कि हम नेचुरल योगी बने रहते हैं, मेहनत नहीं लगती है। बहुत शुरू में हम लोग जब ज्ञान में आए 50 साल पहले, उस समय शोभा यात्रा शांति यात्रा निकलती थी तो ये नारा हम बोलते थे कि मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति, ऐसा नारा बोलते थे। जीवन बंद का अनुभव तो हम सबने कर लिया है ना? आधा कल्प, द्वापर और कलयुग, इस अंतिम जन्म में भी ज्ञान से पहले तक जीवन बंद स्थिति में थे। हर चीज आत्मा को बांधने वाली थी। फिर शरीर है, संबंध है, समाज है, पर्यावरण है या संसार है, सब कुछ आत्मा को बांधने वाला है, क्योंकि देहभान की स्थिति में रहते हैं तो आत्मा देह का बंधन महसूस करती है। क्योंकि खुद को शरीर समझेंगे तो शरीर की हर स्थिति का असर आत्मा पर आता है। अब बाबा ने हमें पहला ही पाठ आत्मभान का पढ़ाया। इस शरीर में रहते हुए भी हम आत्म स्मृति में रहते हैं, सोल कॉन्शियस रहते हैं, तो देह में रहते हर क्षण देह द्वारा कर्म करते हुए भी देहभान में नहीं आते, अंदर से एक डिटैचमेंट बना हुआ है, क्लैरिटी है कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है, शरीर तत्व है और मैं आत्मा शक्ति हूं। ये समझ, ये जागृति जो मिली है बाबा की तरफ से, तो हर क्षण शरीर का उपयोग भी कर रहे हैं क्योंकि जीवन में है ना, नेचुरल क्रियाएं चल ही रही, देखना, बोलना, सुनना, सोचना, श्वास लेना, ये नैसर्गिक क्रियाएं हर क्षण चलती हैं। लेकिन मुझे स्पष्ट है कि ये अलग हैं और मैं अलग हूं, तो इसमें होते हुए भी बंधे नहीं। भल शरीर को स्वच्छ भी रख रहे, बाबा का ज्ञान तो अपने आप में विशेष है, भक्ति में देहभान मिटाने के लिए या इंद्रिय रसों का आकर्षण मिटाने के लिए, या तो वो देह को कष्ट देते हैं, देह दमन करते हैं या देह की अवमानना करते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते, पर बाबा ने हमें नया दृष्टिकोण दिया। हम देह नहीं है, पर देह ही इंस्ट्रूमेंट है मुझ आत्मा को अभिव्यक्त होने के लिए। हर कर्म करने के लिए शरीर ही मेरे लिए एक साधन है। तो कॉन्शियस भी नहीं बनना है तो केयरलेस भी नहीं रहना है। बॉडी कॉन्शियस नहीं हो जाना है तो केयरलेस भी नहीं रहना है, अलबेला भी नहीं रहना, स्वच्छ भी रखना है। बाबा ने कहा है व्यवस्थित रहना है। तुम बच्चों में रॉयलिटी हो परंतु फैशन ना हो, है ना। तो एक बैलेंस एक ऐसा बाबा ने बना के दिया है कि शरीर को संभाल भी रहे हैं और शरीर भान में भी नहीं आते, जरूरी केयर भी करना है तो कॉन्शियस भी नहीं बनना है। इसलिए हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हुए भी मुझे शरीर भान से न्यारा रहे। तो ये जो डिटैचमेंट है, न्यारापन है, वे देह को कष्ट देते हैं। भक्ति में हठ दमन करते हैं देह भान भूलने के लिए, पर बाबा ने सिंपल विधि हमें सिखाई। देह भान भूलना है तो क्या करना है, खुद को आत्मा समझना है और शरीर की हर क्रिया, क्योंकि जीवन में है तो खाना भी है, नहाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, कर्म भी करना है, ये क्रियाएं भी करनी है, लेकिन आत्माभिमानी बनकर, माना मुझे वो कर्म वो देखना है, वो सोचना है, वो सुनना है, वो बोलना है, वो खाना है, वो पीना है, वो पहनना है जो मैं स्व में स्थित रहूं, जिससे मुझ आत्मा की स्थिति और ऊंची बने। और रोज ये प्रैक्टिस हम करते हैं कि मैं देह से अलग चैतन्य शक्ति आत्मा शुद्ध सत्य शांत आत्मा हूं। ये अभ्यास हमें न्यारा रखता है। जिस चीज का रोज अभ्यास करते हैं तो समय पर अवेयरनेस बनी रहती है। इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि टाइम पर हम जागृत रहे, अलर्ट रहे। कई कहते हैं भी वैसे मुझे पता था पर उस समय भूल गए, है ना। तो क्यों रोज बाबा प्रैक्टिस कराते हैं, ताकि देहभान बढ़ाने वाली कोई भी परिस्थिति आवे तो उस समय मैं आत्मा जागृत रहूं, अलर्ट रहूं। इसलिए हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। साइलेंस में बैठकर खुद की सत्यता, खुद की रियलिटी, खुद को रिवाइज कराते हैं तो ये पाठ पक्का होता जाता है। इसलिए बाबा कहता है अति महंगा भी नहीं, अति सस्ता भी नहीं, तुम्हारा बीच का संगम युग माना बीच का। ऐसा भी नहीं है कि अव्यवस्थित भाई देहवान भूलना है तो स्वच्छता भी ना रखे, व्यवस्थिता भी ना रखे, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि भाई व्यवस्थित रहना है, रॉयल रहना है तो कॉन्शियस ही बन जाए, नहीं। एक बैलेंस रखना है। और स्वस्थ भी रहना है। अल्टीमेट हम सब जानते हैं कि वापस घर जाना है, जानते हैं ना हम सब। बाबा ने हम सबको फाइनल प्रोग्राम कौन सा दिया? मिल गया है ना सबको प्रोग्राम, वापस घर जाना है। अल्टीमेट तो शरीर छोड़ना ही है, पर हम क्यों भोजन करते हैं, क्यों स्नान करते हैं, क्यों तैयार होते हैं? शरीर तो छोड़ना है ना, पर क्यों? क्योंकि इसी साधन से पुरुषार्थ भी करना है, सेवा भी करनी, फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेज में जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरी याद में भोजन करो, बाबा को भोग लगा करके खाओ। तो नेचुरली जैसे ही 3 मिनट 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, भोजन की थाली तैयार मिलती है और हम बाबा को भोग लगाते हैं, 1 मिनट आधी मिनट भी चलो, तो एक डिटैचमेंट होता है ना। तो भोजन का रस, स्वाद या आकर्षण अपने आप खत्म हो जाता है। नहीं तो उसका आकर्षण होता है ना कि चलो भाई आज रसगुल्ला करके लग जाओ, ऐसे नहीं, पहले भोग लगाना है तो डिटैचमेंट रहता है ना, पहले बाबा को अर्पण करना है तो नेचुरली आपका आकर्षण खत्म हो जाता है। तो भोजन करना भी है और स्वादेंद्रिय पर विजय भी पाना है, कॉन्शियस भी नहीं बनना है। बाबा ने स्लोगन ही बदल दिया कि जीने के लिए खाना है न कि खाने के लिए जीना, वरना तो बुद्धि उसी में रहती थी भाई आज संडे है, आज ये बनाओ, आज वो बनाओ, फलाना बनाओ। अब यहाँ तो संडे हैं तो और पुरुषार्थ के प्रोग्राम बन जाते हैं और सेवा के प्रोग्राम बन जाते हैं। तो वो कॉन्शियसनेस नहीं रहती। और ये गेट है बॉडी कॉन्शियसनेस, वो द्वार है जिससे व्यक्ति, वैभव और संसार के आकर्षण में हम चलते हैं। इसलिए मुक्त होने के लिए वो दरबार छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको और कुछ पता नहीं। पर कोई भी देहधारी माना संबंध या वैभव पदार्थ और दुनिया का आकर्षण देहभान से आता है। आत्मा शरीर द्वारा संसार के संपर्क में आती है, इसलिए हम कहते हैं ना कि आप मुए मर गई दुनिया, शरीर छूटा माना सब कुछ समाप्त हो गया, नया शरीर, नया परिवार, नया संबंध, नया संसार। इसलिए बाबा ने इससे ही न्यारा कर दिया। तो नेचुरली संबंध दुनिया में दो चीज है ना, संसार प्रकृति और आत्मा से बना है। प्रकृति माना ये चीजें, वैभव साधन पदार्थ धन साधन, और बाकी मैं आत्मा चैतन्य शक्ति। तो संसार में दो चीजें, संबंध और प्राप्ति है ना, दोनों से डिटैच रहने के लिए बाबा ने ये बेस, ये फाउंडेशन हमारा पक्का किया। इसलिए राजा जनक का गायन है, जब एक सन्यासी ने सुना कि राजा जनक को जीवन मुक्ति मिली तो वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हम इतने सालों से सन्यास किया है, हमें जीवन मुक्ति नहीं मिली, राजा जनक तो गृहस्थी है, राजा है, उनको कैसे मिली। तो राजा जनक के पास जाता है और राजा जनक कहता है कि आप देख के आओ, मैं राज कारोबार भी करता हूँ, राजमहल भी है, परिवार भी है, राजकोष भी है, तो ये दीवा लेकर जाओ और सारा देख के आओ। पर क्या ध्यान रखना, दीवा बुझना नहीं चाहिए। तो वो दीवा लेकर जाता है और पूरा महल दरबार खजाना सब देखता है, पर उसका अटेंशन किस में रहा कि ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। वही बाबा ने हमें सिखाया कि जिम्मेवारियां भी संभालनी है, रचना को भी संभालना है, सेवा भी करनी है। बाबा ने तो और एडिशन कर दिए, पर सदा अटेंशन ये रखना है कि मुझे सब कुछ अपनी आत्मस्थिति से करना है, अपनी ओरिजिनल शुद्ध सत्य आत्मस्थिति में स्थित होकर मुझे ये करना है। तो जब प्रैक्टिकल हम ऐसा करते हैं तो शरीर की कुछ भी स्टेज बने, चाहे बीमारी हो या कोई नुकसान हो, पर हम डिटैच रहते हैं, बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं, तो वो चीज हमारी आत्मस्थिति को हिला नहीं सकती। माना वो दुख नहीं दे सकती, चाहे शारीरिक भोगना है। बाबा ने कहा है दवा दुआ और योग से हिसाब चुकाने, पर वो मुझे कॉन्शियस ना कर दे। मैं आत्मा निमित्त हूं इस शरीर को यूज करने के लिए। और इस अलौकिक जीवन में मुझे श्रीमत अनुसार इसका उपयोग करना है। हर कर्मेंद्रिय का उपयोग श्रीमत अनुसार। आंखों से देखते हैं, क्या डिसिप्लिन है देखने की? श्रीमत क्या है? रूहानी नजर से देखना है, गुणग्राही दृष्टि से देखना है, शुभ नजर से देखना है। मुख से बोलना है, पर श्रीमत क्या है? मुख से ज्ञान रत्न निकले, पत्थर नहीं। दुख देने वाले कड़वे शब्द नहीं। कानों से सुनना है, पर वही सुनना है और सुनकर वही माइंड करना है जिससे मेरी स्थिति ऊंची बने। तो हर कर्मेंद्रिय की डिसिप्लिन बाबा ने बताई है। अगर वो अवेयरनेस रखते हैं तो ऑटोमेटिक जो व्यक्तिगत कर्म है हमारे, एक कर्म है जो दूसरे के रिलेशन में आप करते हैं, पर एक है जो मेरे अपने डिसीजन के पर्सनल कर्म होते, मेरा उठना बैठना बोलना देखना सोचना चलना, ये मेरे व्यक्तिगत कर्म है। हमें बाबा के ज्ञान को और श्रीमत को सबसे पहले पर्सनल कर्मों में धारण कर। जैसे कई कहते हैं ना कि भाई ऑफिस में नौकरी करते हैं, हम नहीं करना चाहते पर सब ऐसे हैं तो हमारे पर दबाव आता है, करना पड़ता है, ऐसा कहते हैं ना कई बार। पर जब पर्सनल कर्म में ज्ञान को धारण करते हैं और शक्तिशाली बनते हैं तो फिर आपकी पर्सनालिटी का प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि लोग आपको गलत कर्मों में लेंगे ही नहीं। वो कहेंगे छोड़ दो इसको, ये इन बातों में नहीं है। समझा? तो ये व्यक्तिगत कर्म, मैं देख रही, मैं बोलती हूं, मैं सुन रही, मैं श्वास ले रही, मैं सोच रही, ये मेरे पर्सनल कैपेसिटी के कर्म है। उसमें मुझे इंद्रिय रसों से मुक्त रहना है। बाबा कहते हैं ना, और बंधन नहीं है और ग्रस्ती नहीं है, पर इंद्रिय रसों की ग्रस्ती है। कोई ना कोई इंद्रिय रस बने रहते हैं, खाने के रस में मन लगा रहेगा, बोलने का रस, ढूंढते रहेंगे कोई मिले तो बात करे, कोई मिले तो बात करे। तो बात करने का रस, मौका मिला है साइलेंस में रहने का, पर वो रस नहीं है तो अंदर राह देखते रहेंगे, कोई आवे तो बात करे। देखने का रस, हमारी जवाबदारी नहीं है तो भी देखेंगे। अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है ना कि बिना मतलब बहुत नेचुरल कैसे आंखें और गर्दन घूम जाती है। कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, फिर फील भी होता है कि ये फालतू देखा मैंने, जरूरत नहीं थी। जितना अटेंशन देते हैं वो कम होता जाए। तो ये देखने का रस, सुनने का रस। मैं यहां बैठी हूं पर सुनने का रस है तो वो दो क्या बात कर रहे हैं, तो अटेंशन वहां है, बैठी यहां है। बिना मतलब बातें जानना, सुनने का रस। जैसे वो जाने बिगर देवता बन नहीं सकेंगे, इतना रस। मुझे तो पता ही नहीं था है, माना इतना इम्पोर्टेंस सुनने का। तो ये इंद्रिय रसों की ग्रस्ती, उसमें से मुझ आत्मा को मुक्त होना, नहीं तो वही चीज बुद्धि में आती है। बाबा कहते हैं ना, सतयुग में तुम माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, काल जीत, जगत जीत, जीवन मुक्त स्थिति में ये सब है। तो संगम के अंत में तो पहुंच ही गए हैं हम। पुरुषार्थ करते करते रिजल्ट हमें ये लाना है कि हम इसमें से मुक्त हो। इसलिए बाबा ने अन्न शुद्धि करवाई। गांधी जी ने भी कहा है, जो विकारों पर विजय पाना चाहते हैं उनको पहले स्वादेंद्रिय पर विजय पाना चाहिए। जो स्वाद को नहीं जीत सकता वो विकार कैसे जीतेगा। इसलिए बाबा ने अन्न शुद्धि का नियम दिया। तो पर्सनल लाइफ में मैं मुक्त हूं ये महसूस कर, और सबसे सूक्ष्म है संस्कारों का बंधन। जो आत्मा में रिकॉर्डेड है, कलियुगी संस्कार, बाबा कहते हैं जब तक संस्कारों में गंदगी है, मन में व्यर्थ संकल्प उठते रहेंगे। गंदगी है तो फ्यूमिंग होगा, गैस बांस फैलेगी। संस्कारों में गंदगी है तो मन में विकल्प उठेंगे। काफी परिवर्तन हम सबने किया है, पर हरेक अपने आप को जानते हैं और हमें अपने आप को देख लेना चाहिए कि मैं कहां अटका हुआ। कौन सा संस्कार फिर आता रहता है? कोई कड़ा संस्कार होता है ना, बाकी तो बदल जाते हैं ज्ञान में आते ही, अच्छे पुरुषार्थी बनने से। पर कुछ डीप रूटेड, वे जड़ें जमाए हुए संस्कार, घर कर गई बीमारी कहते हैं ना, क्रॉनिक बीमारी, ऐसे संस्कार फिर जगते हैं, फिर हम वश होते रहते हैं। के लिए गहरी महसूसता चाहिए कि ये गलत संस्कार है और इस एक के कारण में फेल हो सकता, इस पर मुझे विजय पाना है, उसे खत्म करने के लिए कौन सा गुण, कौन सी शक्ति मुझे धारण कर, उस स्वरूप का चिंतन, अभ्यास, अटेंशन। अगर पर्सनल एरिया में आप सफल हो गए, फिर संबंधों में अपने आप ट्रस्टीशिप आएगी, फिर परिवार और नौकरी धंधा जो कुछ करते हैं वहां हम कमल फूल समान न्यारा रह सकेंगे और ट्रस्टी बन सके, निमित्त भाव आ जाएगा। इसलिए खुद की साधना का नींव पक्की करेंगे तो अपने आप ये दो और क्षेत्र जीवन के, परिवार और कर्म, व्यापार, नौकरी धंधा जो कुछ करते हैं वहां हम ट्रस्टी बन के रह सके कि करना मुझे ही है, संभालना मुझे ही है, क्योंकि मेरे कर्मिक रिलेशन है तो मुझे ही संभालने हैं। पर बाबा मालिक है और मैं निमित्त हूं, तो मेरापन भी नहीं आएगा, मैंपन भी नहीं आएगा। जहां मेरापन है तो प्रभाव आएगा, जिसमें मेरापन होगा उनमें कोई भी ऊपर नीचाई होगी तो उसका असर मेरे पर भी आएगा। तो वहां ट्रस्ट, ब्रह्मा बाप ने सब कुछ संभाला भी पर निमित्त रहे, इसलिए अपने आप को संपूर्ण बना सके, वरना नहीं बना सकते। निमित्त भाव में रहे इसलिए आप समान बना सके, जो निमित्त भाव में नहीं रहते वो आप समान भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो तो खुद ही पकड़ के बैठेंगे, दूसरों को लेने नहीं देंगे। बाबा ने आप समान बच्चों को तैयार किया, क्यों? बाबा ने अपने जैसे क्वालिटी लीडर तैयार की, दादियां, क्योंकि बाबा का पक्का था कि मैं निमित्त मात्र हूँ। करण करावन हार मालिक शिव बाबा है, उसने मेरे द्वारा कराया तो औरों के द्वारा भी करा सकता है, तो समान बनाया, नहीं तो वरना व्यक्ति समान नहीं बनाती है। समझ गए ना बात को, समान नहीं बनाएगी, थोड़ा कम बनाएगी, पीछे रखेगी, पर बाबा ने समान बनाए। इसलिए जो खुद को निमित्त समझेगा वो दूसरे को आगे बढ़ाएगा, समान बनाएगा, तो नेचुरली खुद बंधेगा नहीं कि भी मैंने इतना विस्तार किया पर मैं बंधूंगी नहीं उसमें। किया, कर्तव्य है, फर्ज है, पर मुझे उसमें अटकना नहीं है। इसलिए चाहे लौकिक गृहस्थी में निमित्त है, नौकरी धंधे में निमित्त है, या ईश्वरीय सेवा में निमित्त है, अटकना नहीं है। अल्टीमेट मुझ आत्मा को संपूर्ण बनना है और जाना है। ये भी बहुत सूक्ष्म चीज है कि मुझे अंत तक यही करना है जो संभाल रही हूं, कर रही हूं, मैनेज कर रही हूं, ऑर्गेनाइज कर रही हूं, डेवलप कर रही हूं, वही करना है, या मुझे इससे पार भी जाना है, संपूर्ण भी बनना है। अंदर से लक्ष्य होगा संपूर्ण बनने का, बाप समान बनने का, तो करते कराते भी न्यारे रहे, हम बंधेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं। वरना बाबा कहते हैं ना कि अगर लौकिक लोहे की जंजीर है, क्योंकि वो कर्म बंधन से बना है, विकारी कर्मों से जो हिसाब बना और वो संबंध, तो अलौकिक सोने की जंजीर है, कोई भी बांधे नहीं, अंत तक जिम्मेवारी से संभाले भी, पर अंदर से आत्मा समेटी हुई रहे, न्यारी रहे। ये हमने दादियों में भी देखा कि लास्ट तक रेस्पॉन्सिबल भी रहे। हमने देखा यज्ञ का सदा ख्याल रहा दादियों को, चाहे कितने भी बीमार थे, ऐसे नहीं जवाबदारी छोड़ी या भूले, नहीं, अटेंशन रहा। पर सेकंड में कछुए भी बन जाते, समेट भी लेते, तो आत्मा को अंदर से मुक्ति का आनंद तीन्द्रियानंद का अनुभव हम यहां ही कर सकते हैं। इसी जीवन में जीवन मुक्त स्थिति का अर्थ ही ये है, विजयी भी निमित्त भी और मुक्त भी। अल्टीमेट बाबा जवाबदार, हम बाबा के मददगार। हम जवाबदार हैं, हम जवाबदार हैं। बेशक हमें जिम्मेवारी से हर कर्म करना है, पर कॉन्शियस नहीं बन जाना। कई बार वर्क कॉन्शियस, सेवा कॉन्शियस बन जाते हैं। अल्टीमेट बाबा जिम्मेवार और हम बाबा के मददगार। देखो, इसी के लिए तो साधना है, वरना जीवन में साधना किस लिए? साधना का ध्येय ही ये है, आत्मशुद्धि, पूर्ण मुक्ति। क्यों भक्ति में अल्टीमेट ध्येय मुक्ति बताते हैं ना, माना आत्मा सभी आसक्तियों प्रभावों से मुक्त हो जाए। हम सभी ने योगी जीवन अपनाया है, हमने भोग मार्ग छोड़ा है, हमने ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, पवित्रता का मार्ग अपनाया है। किस लिए? किस लिए? रोज अपना लक्ष्य पक्का करना। फर्स्ट विकारी बंधनों से मुक्त हो। हमने अपनी प्रवृत्ति शुद्ध बनाई, नियम धारणा मर्यादा में आ गए, हमने अपना आहार विहार व्यवहार संबंध सब कुछ शुद्ध किए। वो पहला स्टेप, और वहां से मुक्त होने के लिए बाबा ने पवित्र जीवन, अलौकिक परिवार, रूहानी सेवा हमें दी, ताकि वहां से हम मुक्त हों। हम इसमें लग गए। जिसको ब्राह्मण जीवन कहते हैं, पर ये हमारी मंजिल नहीं है। अब उसमें बाबा कहते हैं, इस ब्राह्मण जीवन में, योगी जीवन में, इस ईश्वरीय परिवार और सेवा संगठन में भी मुझे कहीं भी बंधना नहीं है। वो छोड़ा और इसको पकड़ना, ऐसा नहीं है। मुझे इसमें रहते भी एक बाबा के आधार पर चलना। सेवा आज है कल नहीं भी होगी। संगठन आज मिल सकता है, कल नहीं भी मिल सकेगा। हम एक दूसरे से मिल सकेंगे, पहुंच सकेंगे, नहीं पहुंच सकेंगे, आप जानते हैं क्या परिस्थितियां हो रही हैं। मुझे अपनी लगन से जीना है और चलना है। ठीक है, जब तक मिलता है हम लाभ ले रहे हैं, पर हम आधारित ना हो जाए। इनका लाभ लेते लेते अपने को इतना शक्तिशाली बना ले कि हम कहीं भी हों, हम अपने पवित्र श्रेष्ठ जीवन में और एक बाबा की याद में टिक सके। एक बल एक भरोसा, वही जीवन मुक्ति का अनुभव करा। मुझे आत्मा को कहीं भी आधारित नहीं है, बल्कि बाबा तो उससे भी आगे हमें कहते हैं कि आपको औरों का आधार बनना है, औरों को मदद करनी है। संडे की मुरली में सुना ना कि स्वयं में भी सुख शांति का अनुभव करें और दूसरों को भी कराएं। खुद का इसलिए मुझे अपने आप को अंदर से इतना साफ कर लेना है, सेंसिबल बना लेना है कि कहीं भी हम अटके नहीं, रुके नहीं, भटके नहीं। बाबा ने कहा ना, उनको उलझन क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा, वो एकाग्र हो सकेंगे, अनुभूति में रह सकेंगे। तो एक नेचुरल प्योर दिव्य, हमें ये महसूस हो कि जो धारणाएं नियम मर्यादाएं हमने अपनाई है वो नेचुरल धारणा है, अंदर से है, सिर्फ ऊपर से ली हुई नहीं है। जो संग ना मिले, वातावरण ना मिले तो हमारा रंग रूप बदल जावे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्ययुग माना नेचुरल सत्व प्रधान, जीवन मुक्ति की स्टेट तो वो है ना, नेचुरल प्योर। वहां कोई ज्ञान योग का अभ्यास नहीं है, पर संगम के अभ्यास का फल है। तो अभ्यास करते करते नेचुरल स्टेज पर जाना कि मेरा मन नेचुरल कहां जा रहा है। नेचुरल मुझे कौन से विचार आ रहे, तो पुरुषार्थ करते 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 ये स्टेज हरेक की बनेगी आएंगी कि मेहनत नहीं नेचुरल, यही जीवन मुक्ति। पुरुषार्थी पुरुषार्थी, आखिर विजयी भी तो इसी जीवन में अनुभव करना है ना। सिर्फ पुरुषार्थी स्टेज का ही अनुभव नहीं करना है ना, विजयी सफल है ना, प्राप्ति पूर्णता मुक्ति, ये मुझे यहां ही अनुभव करना। तो सत्य मिल चुका है, बाबा ने हमें मार्ग बता दिया है, सिर्फ दृढ़ता से करते रहेंगे तो जरूर हम उस अनुभूति पर पहुंच ही जाएंगे। ओम शांति।
जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे ये जीवन अच्छा लगता है, यादों में तेरी मस्ती चली है, यादों में तेरी मस्ती चली है, सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे ये जीवन अच्छा लगता है।
थैंक्स गीता दीदी। वंडरफुल। अगर इसी तरह की जहाँ जहाँ जोर लगता है, ताकत लगती है, अभी भी उन पर इतना अटेंशन दें कि वो सभी संस्कार नेचुरल बन जाएं, तो ये ब्राह्मण जीवन बहुत बहुत सुखदायी हो जाएगा, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अव्यक्त वाणी बहुत कुछ बताती है, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह की क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो उसको धारण करना और भी सहज हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।